दो तीन दिन से हम मेडिटेशन सीख रहे हैं। संसार में मेडिटेशन अलग अलग कारण से सीखते हैं, किसी को हेल्थ ठीक करना है, किसको टेंशन से फ्री होना है, किसी को मन की शांति चाहिए। तो आप किस लिए सीखना चाहते हैं? मन की शांति के लिए, हाँ, हेल्थ भी होना चाहिए और परमात्मा के साथ मिलन मनाना है। परमात्मा के साथ भी मिलन क्यों मनाना है? अच्छे गुण आ जाए, विकारों से मुक्त क्यों होना चाहते हैं? दुख देने लगे, माना सुखी रहना चाहते हैं। जीवन में सुख और शांति हर एक को चाहिए। कोई है कहने वाले? नहीं चाहिए मुझे। हर एक को चाहिए, तो उसको अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं। शायद ये करने से मुझे सुख मिल जाएगा, शायद ये करने से मन की शांति मिल जाएगी, तो अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं। तो मेडिटेशन भी एक तरीका है जिसके द्वारा लोग सोचते हैं कि सुख और शांति जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन केवल मेडिटेशन करने से शॉर्ट टाइम के लिए आप शांति की अनुभूति कर सकते हैं। जब तक मेडिटेशन में बैठे हैं तब तक मन शांत है, उसके बाद भी आधा घंटा एक घंटा मन शांत है, लेकिन फिर बाद में क्या होगा? यहाँ आप सभी आए हैं, तीन दिन यहाँ रह करके इतने सारे बातें सुनी, मेडिटेशन किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझी, फिर वापस जाने के बाद कितने दिन तक रहेगा ये सब असर? एक हफ्ता, 15 दिन ऐसा रहे हमेशा के लिए? हो सकता है हमेशा के लिए, हाँ? हमेशा के लिए होना है तो फिर रोज करना पड़ेगा। रोज जैसे भोजन करते हैं तो रोज करते हैं, वो रोज ताकत देता है शरीर को। नहाते रोज है, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के बाद नहाए, फ्रेशनेस मिलता है। कई बार दो बार भी नहा लेते गर्मी के दिनों, है ना? तो ऐसे मेडिटेशन भी रोज करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि मेडिटेशन करने से केवल मन की शांति नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ मिलता है। ये है शक्तियां। शक्तियों को जब तक हम अपने जीवन में धारण नहीं करते तब तक सुख और शांति भी नहीं हो सकता। सुख और शांति इन शक्तियों का बाय प्रोडक्ट है। अगर आपके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है तो सुखी रह सकते हैं? नहीं। डिसीशन मेकिंग पावर नहीं है, निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो सुखी रह सकते हैं? सामना करने की शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है तो सुखी रह सकते हैं? रह सकते हैं? नहीं। तो माना सुख और शांति चाहिए तो फिर एक और काम करना पड़ेगा मेडिटेशन के साथ साथ, वो है शक्तियों को समझ करके उनको अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। वैसे नवरात्रि के दिनों में हम लोग दुर्गे की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, इनको देवियों को कितने हाथ दिखाते हैं? 8 हाथ दिखाते हैं ना? वैसे तो यहाँ 10 दिखाए हैं, माना 2 ओरिजिनल है लेकिन 8 एक प्रतीक है। कोई है इस संसार में जिसको 8 भुजाएं हैं? अगर किसी को एक्स्ट्रा अंगुली भी आ जाता है बर्थ में, नॉर्मल नहीं माना जाता है ना। तो एक्स्ट्रा कुछ भी होता है नॉर्मल नहीं माना जाता, लेकिन इन देवियों को तो हम पूजते हैं, पूजनीय है। क्यों? क्योंकि ये आठ भुजाएं जो है किसका प्रतीक है? अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। एक एक भुजा, एक एक हाथ में एक एक शक्ति है, एक एक शस्त्र है। शस्त्र किसके लिए यूज करते हैं? असुर संहार के लिए यूज किया है इन देवियों ने। और असुर कौन है यहां? कोई बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े शरीर वाले तो नहीं है ना। अपने ही अंदर छिपे हुए विकार, विकार या नेगेटिविटी हम जो कहते हैं। दूसरों की बात तो छोड़िए, अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको संहार करने की जरूरत है। दूसरों का हम कर सकते हैं? दूसरों के जो नेगेटिविटी है उसको हम खत्म कर सकते हैं? कर सकते हैं? अगर दूसरा कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत उसके अंदर नेगेटिविटी है, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं नेगेटिविटी को? प्रेरणा दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बस वो समझ जाए तो, है ना। अगर नहीं समझते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। केवल हमारे हाथ में क्या है? अपने को कंट्रोल करने का रिमोट कंट्रोल है बस। दूसरों को केवल हम इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। अपने को कंट्रोल करना है, अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको निकालना है। और इन देवियों को क्या कहते हैं? ये शिव शक्तियां हैं, शिव की पुत्रियां हैं। कल परमात्मा का लेसन था, हम सभी कौन है? सिर्फ ये देवियां जो है केवल वही शिव की पुत्रियां हैं? हम सभी आत्माएं कौन है? हम सभी आत्माएं उस परमात्मा के संतान हैं, और उस परमात्मा को हम शिव कहते हैं। शिव माना कोई हिंदू या दो कोई धर्म का प्रतीक ये नहीं है। शिव माना बिंदु, शिव माना कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी, है ना। वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उस परमात्मा का हम, उस परमात्मा के हम सभी संतान हैं। तो हम जब संतान हैं तो फिर हम भी, हमें भी परमात्मा से वर्षे के रूप में सर्वशक्तियां मिली हुई हैं। है ऑलरेडी, केवल स्मृति की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, मांगने की जरूरत नहीं है। हे परमात्मा मुझे शक्ति दे दो, मांगने से मिलता है? केवल स्मृति की जरूरत है कि मैं आत्मा कौन हूं। मैं आत्मा उस परमात्मा सर्वशक्तिवान के संतान हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर सर्वशक्तियां हैं। जब ये स्मृति आती है तो ऑटोमेटिकली शक्तियां हमारे अंदर है। भूल जाते हैं ना कभी कभी, जैसे हनुमान को याद दिलाना पड़ता था, तुम पवन पुत्र हो, तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। ऐसे ही हम आत्माओं के अंदर भी इतनी शक्ति है, केवल स्मृति। स्मृति रहेगा तो फिर वो सब कुछ याद आ जाएगा। तो ये अष्ट शक्तियां कौन सी हैं? तो एक एक करके हम देखते हैं अष्ट शक्तियां कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो इस चित्र में देख रहे हैं, कछुए को देख रहे हैं। पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुए की विशेषता क्या है? जब चाहे तब वो अपने कर्मेंद्रियों को अंदर ले सकता है। जब भी उसको डर लगता है ना, तो वो अंदर ले लेता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो शेल है उसका बहुत हार्ड है, और उसका जो शरीर है वो सॉफ्ट है। तो इसीलिए जब भी उसको डर लगता है तो अंदर ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है और उसके ऊपर पत्थर फेंके, कूदे, कोई भी कुछ भी करे, उसको कुछ नहीं होता, सुरक्षित है। ऐसे ही हमारे पास ऐसे कौन सी जगह है जो सुरक्षित है? हमारे पास ऐसे कौन सी जगह है जो सुरक्षित है? है आपके पास कोई सुरक्षित जगह जहां आप पहुंचेंगे तो डर नहीं लगता? परमधाम। परमधाम तक पहुंचने के लिए भी ग्रेविटी से तो फ्री होना चाहिए ना, नहीं तो फिर बार बार खींचता है ये देह भान की जो मिट्टी है ना, ये बार बार खींचता है, ये ग्रेविटी है खींचता है। तो वहां पहुंचने से पहले कुछ करना पड़ेगा। आत्मिक स्थिति, अपने आप को आत्मा समझना एक सुरक्षित जगह है, क्योंकि सबसे बड़ा जो ये है डर है वो कौन सा डर है? मृत्यु का डर है। जब मैं ये समझती हूं कि मैं आत्मा अनादि अविनाशी हूं, शरीर तो नश्वर है, एक दिन इस शरीर को तो त्यागना तो पड़ेगा ही, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव बातों से हम मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में जो भी जाति भेद है, धर्म भेद है, जो भी भेद है, तो वो किस आधार से? बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार से है ना, देह भान के आधार से है। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो बहुत सारी बातों से, लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी से हम ऊपर उड़ सकते हैं। लेकिन वहां तक वो अनुभव करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार अनुभव करना शुरू कर दिया तो बहुत तूफानों से हम बच सकते हैं। जैसे सागर में जब तूफान आता है ना, उसका जो मूवमेंट है स्पाइरल है, ऐसे राउंड घूमते 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 आगे जाता है। अगर उसके चपेट में कोई जहाज आ जाता है ना, तो जरूर वो, अगर स्पीड ज्यादा है तो वो डूबना निश्चित है। लेकिन अगर वो कैप्टन बहुत होशियार है तो क्या करेगा, कैसे बचाएगा उस जहाज को, कैसे डायरेक्शन चेंज करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, दूर कैसे, माने ऐसे चपेट में आ गया तो दूर माने बाहर जाना पड़ेगा, राइट? अगर जितना बाहर जाने की कोशिश करेंगे ना, उसकी स्पीड ज्यादा है, बाहर का जो तूफान है वो ज्यादा है, अंदर का थोड़ा कम है, राइट? जितना बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसका उतना ज्यादा अंदर खींचेगा, वो डूब जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसके बीच में जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच का जो ये है ना, जो जगह है वो बहुत शांत है, उसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, तूफान की आंख। तो वो जो जगह है एकदम शांत है और वहां जाना मुश्किल है, लेकिन एक बार पहुंच गए ना, सेफ है। चारों तरफ तूफान है लेकिन वो बीच की जगह जो है वो एकदम शांत है। ऐसे ही हमारे जीवन में चारों तरफ किसका तूफान है, परिस्थितियों का, समस्याओं का, संबंधों के अनबन का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के, बहुत सारे तूफान हैं चारों तरफ। लेकिन उन समस्याओं के समाधान को कहां ढूंढेंगे, बाहर जाने से मिलेगा? नहीं, जितना हम अंदर जाकर के अपने अंदर ढूंढेंगे ना, और क्योंकि वो तो एकदम शांति की जगह है, और सब समस्याओं का समाधान खुद के पास है, खुद के पास है। लेकिन वहां मुझे पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। जितना मैं अपने स्वस्थिति में स्थित होती हूं, आत्मिक स्थिति में स्थित होती हूं, शांति की अनुभूति करती हूं, तो वो जो बुद्धि है ना, बहुत उसके अंदर क्लैरिटी आना शुरू होता है और तूफान थमने लगता है ना। तो इसीलिए ये शक्ति बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि वैसे तो कहते हैं तो सब संसार में रह करके सब संबंधों को निभाना है ना। भाग करके तो मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन कहाँ करना है? घर में रह करके सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए इसका अभ्यास करना है। तो मेडिटेशन करने से हमारे संबंध भी ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक हो जाते हैं? क्योंकि आत्मिक स्थिति को समझते हुए दूसरों को भी आत्मा समझ करके हम व्यवहार में आते हैं तो सब चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे अगर कोई महिला है सुबह से शाम तक बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही है, अगर कोई टीचर है वो टीचर का भी रोल निभा रही है, माँ का भी रोल निभा रही है, पत्नी का भी रोल निभा रही है, बहू का भी रोल निभा रही है, बेटी का भी रोल निभा रही है, अगर वो प्रिंसिपल है तो बॉस का भी रोल निभा रही है, तो वो किसको ये करना है तो वो सबॉर्डिनेट का भी रोल निभा रही है। तो माना सुबह से शाम तक हम सभी अलग अलग रोल निभाते हैं, लेकिन क्या होता है, कोई ना कोई एक रोल के साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं, मोह हो जाता है। तो ये अक्सर करके हमारा किसके साथ मोह हो जाता है, कौन से रोल के साथ मोह हो जाता है? बच्चों के। अगर मैं माँ हूं, वो रोल केवल वही एक रोल है आपका? माँ केवल दो बच्चों की माँ है आप, राइट? पूरे संसार की माँ नहीं हुआ, राइट? दो बच्चों की माँ हो, लेकिन वो कॉन्शियसनेस इतना गहरा है मैं माँ हूं, उसके कारण से क्या होता है, दिन भर भले स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बीच बीच में किसकी याद आती है? बच्चों की। भोजन किया होगा कि नहीं हो, घर में ठीक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये वो जिसके प्रति हमारा मोह होता है ना, उनकी याद बार बार आती रहेगी। तो इसीलिए हमारी एनर्जी जो है, मन की शक्ति जो है, केवल एक रोल, एक पार्ट के लिए मैं अपनी एनर्जी दे रही हूं, तो दूसरे जो रोल मुझे निभाना है उसको तो मैं शक्ति दे ही नहीं रही हूं। तो क्या होगा, भले ये रोल मैं अच्छी रीति निभा रही हो, लेकिन दूसरे कहीं ना कहीं अनबन हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरे संबंधों के साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि संबंध निभाना है, लेकिन उन संबंधों को भी अच्छी तरह कैसे निभाए कि बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के ये सोचे कि मेरा एक रोल है बस, मैं माँ का रोल निभा, मैं माँ नहीं हूं लेकिन माँ का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं टीचर का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं माँ का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं पत्नी का रोल निभा रही हूं। बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के रोल कॉन्शियस में आते हैं तो वो जो संबंध है वो अच्छी रीति हम उन संबंधों को निभा सकते हैं, नहीं तो फिर सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए संबंधों को भी निभाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है पावर टू विथड्रॉ। इसका मतलब है बार बार अपने आप को आत्मा समझ करके फिर कार्य में आना, ठीक है। और दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति या पावर टू पैक अप। हम सभी यात्रा करते हैं, आप सभी भी ट्रैवल करके यहां तक आए हैं अलग अलग जगह से। आपका सूटकेस कितने हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है? एक ही सूटकेस ले आए हैं? हाँ, जब सूटकेस प्रिपेयर कर रहे थे, आप सामान डाल रहे थे अपने सूटकेस में, जो जरूरी चीजें थी वही डाले, जो लगता है कि चलो इस चीज के बिना हम चार दिन रह सकते हैं, तो सभी चीजों को निकाल दिया, जो बहुत ही आवश्यक चीजें हैं उसी को आपने सूटकेस में डाले। क्यों? क्यों? क्योंकि लगेज लाइट रखना चाहते थे, राइट? लगेज लाइट क्यों चाहिए आपको? जितना ज्यादा बोझ उतनी ज्यादा चिंता, राइट? अगर ट्रेन से आप ट्रैवल करके आए हैं तो एक सुटके से तो निश्चिंत है, एक बर्थ के नीचे डाल दिया, निश्चिंत होकर के सो गए, लेकिन उसकी जगह चार सूटकेस है तो एक तो जगह की कमी, और दूसरा अगर कोई कहे कि रात को ना ये ट्रेन ऐसे जगह से गुजरता है जहां डकैती बहुत होता है, चोरियां बहुत होती हैं, तो रात भर नींद आएगी? रात भर नींद आएगी? उठ करके गिनते रहेंगे मेरे के चार के चार या दस के दस है पीसेस, लगेज के पीसेस है, एक है तो डाल दिया, निश्चिंत हो गए, है ना? माना जितने ज्यादा लगेज उतने ज्यादा चिंता। इस यात्रा के लिए हम अपना प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जीवन रूपी यात्रा के लिए आपके लगेज यहां कितना है? यहां लगेज आपका कितना है? नींद नहीं आती? खत्म खत्म हो गया है? तो यहां तो हमें हल्का रहना रखना है ना, जो बहुत जरूरी है वही बातें हमको यहां रखना है, जो अनावश्यक है चीजें उसको हमें निकाल देना है, तब जाकर के जीवन रूपी जो यात्रा है वो सुखद रहेगा। जो अनावश्यक लगेज है वो कौन सी है? जो यहां ढोके चल रहे हैं, जब अनावश्यक बातें यहां है ना, फिर हम अगर पूछते हैं कैसे चल रहा है जिंदगी, हाँ ठीक है, क्या है, चल रहा है, मतलब उमंग उत्साह ही नहीं है, यहां भारीपन इतना ज्यादा है, तो इतना सुंदर जीवन है उसका आनंद हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहां भारीपन। तो अनावश्यक लगेज कौन सा है जो निकालना है? वेस्ट, व्यर्थ बातें, अनावश्यक जो बातें हम सोचते रहते हैं ना, तो दो तीन कैटेगरी के हैं अनावश्यक बातें। अनावश्यक पास्ट के बारे में सोचना, जो बीत गई बात, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो बातें हुई हैं, वो सब कुछ लेकर के हम परेशान हो रहे, इसने ना ऐसा किया था, उसने ना ऐसा किया था, और जो भी मेमोरीज है ना पास्ट के, नेगेटिव मेमोरीज आप ज्यादा याद रखते हैं या पॉजिटिव मेमोरीज या ज्यादा याद रखते हैं? क्यों? अगर आपके, मतलब अगर मैं पूछूं आपको, आपके जीवन में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? जो कहते हैं सुख ज्यादा है वो हाथ उठाइए। नहीं, ज्यादा की बात, दोनों है ठीक है, जीवन है तो दोनों रहेगा, लेकिन ज्यादा क्या है, सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? सुख जिसको ज्यादा है तो हाथ उठाइए। ओके, जिनको दुख ज्यादा है वो हाथ उठाइए, और जिन्होंने दोनों में नहीं उठाया उनका क्या है? फिफ्टी फिफ्टी है। जो कह रहे हैं दुख ज्यादा है, सचमुच आपको दुख ज्यादा है? सचमुच आपको दुख ज्यादा है? आप देखिए तो जरूर आपके जीवन में सुख ज्यादा है। वो स्मृति नहीं रहती उसके बारे में, हमारे वो याद नहीं रहता, क्योंकि बार बार हमारा जो अटेंशन है ना वो नेगेटिव बातों पे जाता है। अरे मुझे ये नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब परेशानियां समस्याओं के बारे में भी हम ही ज्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव बातों को हम ज्यादा महत्व नहीं देते। वो तो ठीक है ना, होना ही है ना, होना है। दो टांगे हैं, दो ये है, हाथ है, दो आंख है, शरीर तो ठीक ठाक है, मैं चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। दिन में दो खाना तो खा सकती हूँ, दो रोटी तो खा सकती हूँ, दो बार, तीन बार, और सिर पे छत है तो बेसिक तो है ही, है ना, बहुत बड़ी बात है। और ये संसार में कितने करोड़ों लोगों को वो भी नसीब नहीं है, है ना, इससे बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत बड़ी बात है ना। तो अगर एक एक चीज मैं देखती जाऊं अपनी जिंदगी में, बहुत सारी चीजें हैं मेरे जीवन में जो जिसके लिए मैं भगवान को थैंक्स बोल सकती हूँ, है ना। तो अगर वो गिने तो इतना लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम अपने पॉजिटिविटी को देखें? नहीं तो हमेशा हम नेगेटिविटी को सोचते सोचते देखते देखते उसका जो भारीपन है ना इतना ज्यादा हो गया है, उसका हमें रियलाइजेशन ही नहीं है और उसका आनंद भी हम नहीं उठा रहे हैं, है ना। तो आज के बाद क्या करना है? जो भी नेगेटिव मेमोरीज है उन सभी बातों को मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? नेगेटिव मेमोरीज को मिटाना है, कैसे मिटाएंगे? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग भी क्या करेंगे? नेगेटिव मेमोरीज कहां आता है? अगर किसी ने धोखा दिया, किसी ने गलत व्यवहार किया मेरे से, या गलत बोला, मतलब जिनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है वो अगर कुछ बोल देते हैं ना, वो मन को लग जाते, दिल को लग जाता है, तो वो लेकर के हम वो बोल करके भी निकल गए, वो भूल भी गए, लेकिन हम उसको लेकर के बार बार उसी क्षण को बार बार जी रहे हैं। तो इसलिए उसको मिटाना है। वो मिटाना कैसे मिटाएंगे? मेडिटेशन में क्या सोचेंगे? पॉजिटिविटी में क्या सोचेंगे? क्योंकि क्या है, पॉजिटिविटी है या मेडिटेशन है, ये मेडिसिन की तरह, लेकिन कौन से मेडिसिन लेना है? कहते हैं कि पेट दर्द है, मेडिसिन ले लो। अरे भाई मेडिसिन ठीक है, कौन सा मेडिसिन लो? वो पर्टिकुलर मेडिसिन होता है ना, पेट दर्द के लिए अलग मेडिसिन होता है, सिर दर्द के लिए अलग मेडिसिन होता है, हर बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन है। तो पास्ट, नेगेटिव पास्ट को भूलना है तो उसके लिए क्या मेडिसिन है, कौन सी गोली है? क्षमा करना। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे ना, तब तक हम भूल नहीं पाएंगे। फॉरगिव ओनली देन यू कैन फॉरगेट। फॉरगेट करना मतलब भूलना है, तो फॉरगिव करना, क्षमा करना जरूरी है। क्षमा कर सकते हैं? ऑप्शन ही नहीं है। मजबूरी से अगर करेंगे ना तो नहीं होता। ठीक है क्षमा कर दिया, नहीं वो उसको मालूम पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं तो हल्की हो जाऊंगी ना अगर मैं क्षमा करूं दिल से किसी की, तो मैं तो हल्की हो जाऊं ना। तो नहीं तो बार 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 वो जो नेगेटिव इमोशंस है मेरे अंदर, वो मेरे लाइफ में वो परेशानी क्रिएट हो रहा है उसके कारण से, तो क्षमा कर दे तो फ्री हो जाए उस बोझ से। हैं? कायरत? क्षमा करना कायरत है? मना क्षमा करने के लिए हिम्मत चाहिए। कई बार हम क्षमा इसलिए नहीं करना चाहते ना, क्यों नहीं करना चाहते पता है? ईगो नहीं, कहीं ना कहीं ये होता है उसका किया हुआ उसका रिटर्न मिलना चाहिए। उसने ना इतना दुख, मैंने तो इतना कुछ मदद की, उसने तो इतना दुख दिया मुझे, ओके देखना एक दिन ना दुखी होके मरेगा। ऊपर से क्षमा करते हैं लेकिन दिल से क्या सोचते हैं? दिल से हम सोचते हैं एक दिन ना दुखी होके मरना चाहिए ना, इतना परेशान कर दिया मुझे तो ये तो वो ऐसा होना चाहिए। अगर हम ऐसे दिल से बद्दुआ देते हैं तो क्या होगा? उसको लग जाएगा लेकिन अपना क्या हाल होगा? कर्म की गुह्य गति पता है ना, जो मैं दूंगी वो लौट कर वापस आएगा जरूर। मैं अगर किसी को श्राप दे रही हूं तो क्या होगा? मैं श्राप ही तो दे रही हूं, दुखी होके मरो, राइट? ये श्राप ही तो है दिल से, जो अगर श्राप देते हैं तो लग जाता है उनको। तो चलो वो तो दुखी हो गया लेकिन वो रिबाउंड हो करके मुझे भी तो होगा। तो इसीलिए ये साइकिल है। चलो उसने दुख दिया, मान लिया उसने दुख दिया, ये नहीं है कि उसने सुख दिया, दुख दिया तो हम दुखी हो गए, लेकिन मैंने भी श्राप दिया तो फिर लौटेगा वापस ना दोबारा, तो ये साइकिल बढ़ता जाएगा। मैंने दिया फिर आएगा, फिर दिया आएगा, फिर दिया आएगा, तो ये साइकिल नेगेटिव साइकिल बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाने के लिए आत्मा के अंदर शक्ति चाहिए। अगर कोई मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, वापस चिल्लाना बहुत इजी है लेकिन उस समय चुप रहना मुश्किल है। उसके लिए शक्ति चाहिए, वो ब्रेक लगाने की शक्ति चाहिए, क्योंकि मैंने चिल्लाया तो और बढ़ेगा वो सब बातें। मैं चुप रह गई उस समय लेकिन बाद में उसको समझाने की कोशिश की तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस समय क्योंकि बहुत सारे जो खून है या फिर लड़ाई झगड़े है वो कैसे बढ़ेगा, बढ़ता है। तो ऐसे कंट्रोलिंग पावर नहीं है, है ना? तो इसीलिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो तभी हो सकता है जब हम क्षमा करना सीखते हैं, है ना? तो क्षमा कैसे करें? वो सहन शक्ति तो बड़ी बात है लेकिन क्षमा करना कैसे शुरू करें? जैसे बद्दुआ देते हैं जब दुखी होते हैं, तो इसलिए उस जगह पर दुआ देना। अगर हम किसी से बहुत प्यार करते या अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को जो और बहुत निकट संबंधी है उनको हम आशीर्वाद देते हैं, फूलो फलो आगे बढ़ो, बहुत है ना, तरक्की करो, आप सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, मतलब बहुत अच्छी तरह दिल से हम उसको आशीर्वाद देते, दिल से हम उसको दुआ देते हैं। ऐसे जिसने भी आपको दुख दिया है क्या उनको आप दुआ दे सकते हैं? दे सकते हैं? उसने दुख दिया है आपको लेकिन फिर भी हम रिटर्न में क्या सोच रहे हैं? फूलो फलो आगे बढ़ो, सुखी हो जाओ, ऐसे दुआ दे रहे हैं। हो सकता है भले जाकर के नहीं बोलो लेकिन फिर एटलीस्ट सोचना डिफिकल्ट है, करना सीखना पड़ेगा। अगर आप लाइट रहना चाहते हैं, अपने बोझों से मुक्त रहना चाहते हैं, करना सीखना पड़ेगा। अगर सीखेंगे तो सारे बातों से आप फ्री हो सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। इसलिए कहते हैं सुख किसी को क्षमा देने से उसको हम कोई बेनिफिट कर रहे हैं नहीं, सबसे ज्यादा फायदा खुद को है दूसरों को क्षमा करने, दूसरों का फायदा नहीं है, खुद का फायदा है। तो इसीलिए खुद के फायदे को देखते हैं ना, तो क्षमा करना सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है अनावश्यक भविष्य की चिंता। हर एक को चिंता है यहां कल क्या होगा, है कि नहीं है? हाँ, बच्चे बड़े होने के बाद क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया हो जाए तो क्या हो जाएगा। मतलब अनाव घटनाएं नहीं घटी है, लेकिन समाज की परिस्थितियों को देख करके, न्यूज जो देखते हैं हर रोज न्यूज में देख करके ऐसा कभी कभी लगता है कि कहीं मेरे फैमिली के साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। कलयुगी दुनिया है तो बहुत कुछ हो रहा है संसार में, कभी कभी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे लाइफ के साथ। तो ऐसे बार बार इनको देख करके अपने जीवन के साथ जुड़ करके देखते हैं, जोड़ करके देखते हैं तो क्या होगा, क्या होगा? अगर मान लीजिए आपके जो एरिया है, आपके एरिया में बहुत सारे चोरियां हो रही है उन दिनों में, हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जा रहे हैं तो लॉक लगाते हुए, अच्छी तरह लॉक लगा रहे हैं, सब कुछ लगा करके लॉक लगाते हुए ये सोच रहे कहीं चोरी ना हो जाए, हमारे घर में कहीं चोरी ना हो जाए, तो क्या होगा, होगी चोरी? तो ये सोच रहे कहीं चोरी ना हो जाए तो कैसे चोरी होगी? लेकिन सोच ये सोच नहीं रहे ना कहीं चोरी हो जाए, ये सोच रहे चोरी ना हो जाए। प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, लेकिन प्रिकॉशंस किस रीति से दे लेना है? सेफ्टी तो चाहिए, सेफ्टी वो प्राइमरी नीड है हमारा। इंश्योरेंस करा दे इंश्योरेंस कराने के बाद भी ये सोचे कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, तो जरूर उनके घर में चोरी हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई बार बार आपको कहे ना कि आपको उनको उनके घर में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो व्यक्ति आकर के कहे कि सर प्लीज चलिए हमारे घर, एक बार चलिए, एक बार कदम डाल के आ जाइए, प्लीज आइए, जाना नहीं है, लेकिन बार 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 फोर्स कर रहे, तो आप क्या करेंगे? एक दिन जाकर के निपटा देंगे ना, अभी तो फिर क्या है करके, एक बार जाके ही आ जाएंगे, क्योंकि इतना फोर्स कर रहे हैं। तो ऐसा ही है, बार बार ये सोच रहे हैं कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो, उस चोर को आना नहीं है आपके घर में, लेकिन बार बार निमंत्रण दे रहे हैं ना, आ जाओ मेरे घर, आ जाओ मेरे घर, आ जाओ, रोज रोज आप एनर्जी भेज रहे हैं चोर को, तो कहेंगे तो चलो ना एक बार जाके ही आ जाते हैं। वो एनर्जी कैसे गई चोर को, चोर के पास? आपने तो सही सोचा, लेकिन एनर्जी कैसे गई उसके पास, वो सिग्नल कैसे गया, वाइब्रेशन कैसे गया? आप तो निमंत्रण नहीं दिया, मत आओ बोला, चोर मत आओ, लेकिन फिर भी वो एनर्जी कैसे गया? क्योंकि अगर आपको कहते हैं ना अगले 30 सेकंड के लिए, 30 मिनट भी नहीं, एक मिनट भी नहीं, 30 सेकंड के लिए आप बंदर को याद नहीं करो, तो क्या याद आया, क्या याद आया? बंदर ही याद आया। इंस्ट्रक्शन क्या दिया? बंदर याद मत करो, बंदर ही याद आया, भले बंदर को कई दिनों से याद नहीं किया, वो ऊपर आ रहे थे तो बंदर को, दो चार बंदर को देखा होगा बस ना, लेकिन बाद में तो याद ही नहीं था। लेकिन मैंने क्या कहा कि बंदर को याद नहीं करना, लेकिन जैसे ही कहा बंदर का चित्र आ गया, है ना। मन इस रीति से कार्य करता है, तो इसीलिए जो चाहिए उसी को याद करना, जो नहीं चाहिए उसको याद नहीं करना, क्योंकि मन जो है ना चित्रों में याद करता है, मन जो चित्रों में काम करता है ना। बंदर चित्र है तो याद आ गया, वो ये हो गया, नहीं का कोई चित्र नहीं है ना, वो फिर नहीं याद। तो इसीलिए जो चाहिए उसी को याद करना है, जो नहीं चाहिए उसको याद नहीं करना है। चोरी नहीं चाहिए तो क्या करना है, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा ना। चोरी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, चोरी की जगह क्या चाहिए आपको, सुरक्षा। मेरा घर सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। वो सुरक्षा का जो कवच है, वो वाइब्रेशंस मैंने फैलाया घर को, घर के चारों तरफ, वो सुरक्षित है, है ना। जो चाहिए वही सोचना है। बीमारी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, हेल्थ। अच्छा हेल्थ चाहिए तो मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ रहूंगा, तो हेल्थ के बारे में सोचना। बीमारी के बारे में अरे मुझे ये बीमारी, अरे मुझे ये बीमारी, ये बीमारी, बीमारी को मैं एनर्जी दे रही हूं, नहीं, बीमारी है ठीक है, लेकिन स्वस्थ कर रही हूं, स्वस्थ, वो हील हो रहा है, हील हो रहा है। हीलिंग के बारे में सोचती हूं तो वो हील हो जाता है ना। तो इसीलिए भविष्य की चिंताओं को कम करने का तरीका है, हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में सोचे, जो भी घटना है पॉजिटिव घटनाओं को इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। जितना हम पॉजिटिव विजुलाइजेशन करते हैं भविष्य के बारे में, पॉजिटिव घटनाएं हमारे लाइफ में घटते जाएंगे, ठीक है। तो ये दो प्रकार की जो बोझ है तो वो मिटता जाएगा। और तीसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। इसमें दो शब्द हैं, सहनशीलता, सहनशीलता दो शब्द हैं, तो उसका अर्थ क्या है, सहनशीलता। कई बार हम सोचते हैं सहन करते 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 कहते आखिर कब तक सहन करना है, तो उसको सहन करना कहते हैं। सहन करना क्या है, दो बातें होती है, एक है सप्रेस करना, दूसरा है सहन करना। कोई गलत हो रहा है, मैं सहन कर रही हूं कर रही हूं कर रही हूं, लेकिन वो प्रेशर बनता जा रहा है, अंदर प्रेशर बनता गया बनता गया बनता गया, तो एक बार उस वो तो ब्लास्ट होगा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रेशर बन गया ना, प्रेशर कुकर में प्रेशर भर जाता है, तो वो तो अगर सीटी वो तो वो ब्लॉक है, सीटी बजने का वो जो है ना वो ब्लॉक है, तो क्या होगा, वो फटेगा जरूर कुकर, है ना। तो ऐसे ही यहां भरता जा रहा है भरता जा रहा है भरता जा रहा है, फिर फटेगा, तो फटेगा कहां से, मुख से। अनावश्यक बिना कारण हम गुस्सा करने लगते हैं। मान लीजिए ऑफिस है, तो ऑफिस में इतना प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वो सारा प्रेशर आकर के रिलीज कहां करते हैं, घर में, घर में रिलीज कैसे करते हैं, वह कोई बच्चा आकर के वो छोटा सा बच्चा है, पता नहीं वो इस कुछ खींच लिया, वो फूट गया, कुछ टूट गया, तो उसको चार थप्पड़, बेचारा नादान है पता नहीं है, लेकिन वो जो प्रेशर है वो जो गुस्सा है इस बच्चे की गलती के कारण से नहीं है। वो गुस्सा कहां से आया, क्योंकि ऑफिस का जो भी प्रेशर है वो इतना यहां तक भर गया था, छोटी सी जो बात जैसे ट्रिगर हो गया तो वो सारा जो गुस्सा है उस बच्चे के ऊपर आ जाता है ना। तो इससे संबंध और ही बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं ना। तो सहनशीलता माना बाहर से भी चुप और अंदर भी शीतल, अंदर भी वो प्रेशर क्रिएट होने देना ही नहीं है। प्रेशर क्रिएट होगा तभी तो वो ब्लास्ट होगा, प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा तो ब्लास्ट होने का नौबत भी नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए वो शीतलता अंदर कैसे रहेगा, बाहर से भी चुप और अंदर भी शीतल कैसे होगा, कैसे होगा? प्यार से, जहां प्यार है ना वहां सहन करना इजी है, जहां प्यार नहीं है वहां सहन छोटी सी बात बहुत बड़ा लगने लगता है। बेटियों को सहन करते हैं, बहुओं को अब हो गया ना, तो अगर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अपना जब समझते हैं ना तो वहां सहन करना इजी है, पराया समझते हैं तो वहां सहन करना मुश्किल है। अपना बच्चा है वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसको हम जाग करके भी उसकी देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ मेहनत करें वो ठीक हो जाए, सब हेल्दी हो जाए। लेकिन अगर आपके घर में कोई अपने अपने संबंधियों का जो बच्चे हैं तो वो उनको छोड़ा हुआ है आपके घर में पढ़ाई करने के, क्योंकि गांव में रह रहे हैं वहां स्कूल की सुविधा नहीं है तो आपके घर में रह रहा है वो और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है उसकी देखभाल करेंगे? अगर ऐसे अपनेपन की भावना रख करके करे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आए ना, कौन सी मुसीबत आ गई लेके जाओ, इतना एक्स्ट्रा काम हो गया मुझे, ऐसा है वैसा है। अपने बच्चे के लिए तो कभी नहीं कहते ऐसे, अपने बच्चे के लिए तो नहीं कहते, दूसरों के लिए कहते, क्योंकि जहां अपनापन है वहां सहन करके मेहनत करके सब कुछ करेंगे, लेकिन परायों के लिए मुश्किल होता है, राइट। तो जहां अपनापन है, प्यार है, स्नेह है, वहां सहन करना इजी है। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना है तो प्यार की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। प्यार की शक्ति को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली सहन शक्ति बढ़ जाता है, लेकिन कहीं लोग क्या सोचते हैं, सहन करना कायरता है, ऐसा सोचते हैं आप, सहन करना कायरता है, क्या सोचेंगे? कई बातों में कौन सी बात में सहन करना है, कौन सी बात में सहन नहीं करना है, फिर कोई रूल्स है? सही चीज को कभी आप सहन किया है? सही चीज को कभी आप सहन किया है? गलत चीज को ही सहन किया, राइट। अगर प्यार से कोई बात कर रहे हैं आपसे, उसको सहन करना कहेंगे? कोई रफली बोलता है, इंसल्ट करता है, हम चुप रहेंगे तो उसको सहन करना कहते हैं, राइट। गलत चीज को भी सहन करना, लेकिन कौन सी बात को सहन करना है, कौन सी बात को हमने सामना करना है? क्योंकि दोनों शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति सहन करने की भी शक्ति है, एक सामना करने की भी शक्ति है, वो दोनों ऑपोजिट है। सहन करने की जगह सामना किया और सामना करने की जगह सहन कर लिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है, गलत शस्त्र का प्रयोग हो गया तो फिर हारना निश्चित है। तो इसीलिए हमें समझना जरूरी है कौन से जगह पर हमें सहन करना है, कौन सी जगह पर हमें सामना करना है। लोगों को सहन करना है और परिस्थिति को सामना करना है. लोगों को सहन करना है और कहीं बार परिस्थिति को सामना करने के लिए लोगों को सहन करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि कोई गलत हो रहा है तो वो उसको ना, जैसे अगर महात्मा गांधी जी ऐसे सोचे होते पहले तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती. गलत चीजों को तो सामना करना है, लेकिन कौन सी, किसको आधार बना करके सामना करना है. उन्होंने सोचा हिंसा का जो सामना है तो अहिंसा से हम लड़ेंगे, राइट, तब जाकर के हमें स्वतंत्रता मिली. उसके बारे में बहुत सारे चर्चा है, वो मैं नहीं उसकी इसमें जाना चाहती हूँ. लेकिन कहने का भावार्थ ये है, सामना भी करना है. गुस्से से, नेगेटिविटी से सामना करेंगे तो कभी हम विजयी नहीं होंगे जीवन के भी जो भी परिस्थितियां हैं. अगर सामना भी करना है, गुणों को आधार बना करके हम सामना करते हैं तो जरूर हम विजयी पाएंगे, विजयी होंगे. तो गुणों को आधार बनाइए. कोई भी परिस्थिति है तो गुणों को आधार बना करके हम करेंगे और बाकायदा लीगली हम करते हैं तो जरूर हम उसको सामना कर सकते हैं. और एक बात जो मैं कह रही थी कि सहन करना कायरता है या वीरता है. जो शक्तिशाली आत्मा है वही सहन कर सकता है. जैसे मैंने कहा कि कोई गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, उस समय चुप रहना बहुत बड़ी बात है, चिल्लाना बहुत इजी है. माना कोई शक्तिशाली व्यक्ति है वही चुप रह सकता है. तो सहन करना एक शक्ति की निशानी है, कायरता की निशानी नहीं है. क्योंकि संबंधों को बना के रखने के लिए सहन शक्ति बहुत बड़ा काम करता है. एक मिनट लगता है संबंध को तोड़ने में, लेकिन बनाने में इतने साल लग जाते हैं, टूटने में एक सेकंड, एक गलत शब्द, एक गलत व्यवहार, गया ना मिट्टी में, मिल गया ना वो सारा मेहनत, है ना. तो वो बना के रखने के लिए सहन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है. और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति. थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे इसको. संजय भाई थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, मेरी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है. पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति. इस चित्र में क्या देख रहे हैं, एक सागर देख रहे हैं. सागर की विशेषता क्या है, उस सागर में कोई भी चीज जाता है ना, वो बाद में खिचड़ा बाहर फेंक देता है, जो अच्छी चीजें हैं वो अंदर ले लेता है. इसीलिए सागर के तले में जाते हैं तो हीरे मोती मिलते हैं, सागर के अंदर जाते हैं तो पानी एकदम शुद्ध होता है, जो भी खिचड़ा है सागर के किनारे मिलते हैं, है ना. तो सागर की विशेषता ये है, खिचड़े को बाहर फेंक देता है, अच्छाई को वो अंदर लेता है. तो संसार रूपी सागर में हम रह रहे हैं तो हमें भी इसकी विशेषता को अपनाना है, लोगों के गुणों को अपनाना है, अवगुणों को बुद्धि से रिजेक्ट कर देना है. जानने के हिसाब से जानना ठीक है, इसके अंदर ये नेगेटिविटी है, इसके अंदर ये गुण है, ये अवगुण है, जानने के हिसाब से जानना ठीक है. लेकिन बार बार अवगुणों का वर्णन करना, बार बार अवगुणों पर हमारा ध्यान जाना, उससे क्या होगा, वो अवगुण अपने अंदर पाएंगे एक दिन. बार बार मैं किसी के अवगुण वर्णन कर रही हूं, ये ना बहुत आलसी है, कुछ न काम नहीं करता है, ये है वो है, बार बार मैं उसका, मुझे पता है वो लेजी है, मुझे पता है वो आलसी है, लेकिन बार बार मेरा चिंतन चल रहा है, बार बार मैं उसका वर्णन कर रही हूं, तो वो जो नेगेटिविटी है ना वो मेरे अंदर एक दिन आ जाता है, क्योंकि मैं उसको एनर्जी दिया, अपनी शक्ति दी, बार बार वो मैं एनर्जी दे रही हूं, तो वो अट्रैक्ट करता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, तो मैं अट्रैक्ट कर लिया वो अवगुण मेरे अंदर, मैंने ले ली, जहां भी मेरा ध्यान गया मैं उस चीज को अट्रैक्ट करती हूं। अब इतने सारे लोग हैं यहां, जो भी हो रहा है तो अलग अलग लोग अलग 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 विचार कर रहे हैं, किसको बहुत अच्छा लग रहा है, किसको नहीं अच्छा लग रहा है, कोई वो हो रहा है हो रहा है, तो माना अपने संस्कारों के आधार से आप उस चीज को देखते हैं, राइट? तो अगर पॉजिटिविटी बार बार गलत चीज में भी अगर पॉजिटिविटी देखते हैं, तो माना आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिविटी में भी अगर नेगेटिविटी देखते हैं, इसलिए कहते हैं ना, किसी ने कीचड़ में कमल को देखा, लेकिन किसी ने चांद में भी दाग देखा। कीचड़ है लेकिन कीचड़ इतना गंदा है, लेकिन उसका ध्यान कहां गया? कमल पर, कीचड़ पर नहीं गया। लेकिन चांद इतना सुंदर है, फुल मून है, पूनम का दिन है, उसका एंजॉय, उसको एंजॉय करने के बजाय क्या उसे, ये चांद में तो दाग है ना, अपना दृष्टिकोण। तो अगर वो नेगेटिव, चांद को एंजॉय करने के बजाय चांद के दाग पर नजर गया, तो जो मजा लेना है लेना था, जो एंजॉय करना था, उसका आनंद लेना था, वो एंजॉयमेंट तो खत्म हो गया ना, राइट? तो इसीलिए हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में हमें पॉजिटिव देखना है। जितना हम पॉजिटिव देखते जाएंगे, उनके साथ एडजस्ट होकर के चलना बहुत इजी है। आजकल एडजस्ट होकर के चलना क्यों मुश्किल हो रहा है लोगों को? कुछ साल पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे, लेकिन अभी कैप्सूल फैमिली है। कैप्सूल फैमिली में भी अलग अलग है, अलग कोई बहुत ही मुश्किल है, सब परिवार वाले एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे होंगे, अलग अलग टाइमिंग्स है उनके भोजन करने के, अलग अलग टीवी है, अलग अलग एंटरटेनमेंट है, अलग अलग सब। परिवार में रहते हुए भी आपस में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्यों? एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो रहा है, क्यों? एक दिन भी साथ में रहना मुश्किल लगता है, परिवार में भी रूम शेयर करना भी मुश्किल लगता है, क्यों? एडजस्टिंग शक्ति, एडजस्टिंग पावर कम है, क्यों? आपस में प्रेम नहीं है और आपस का बॉन्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा हम नेगेटिव देखते हैं दूसरों में, हमेशा नेगेटिव सोचने के देखने के कारण से वो एडजस्टिंग पावर आता नहीं है। जब हम कोई डांस करते, ग्रुप डांस करते हैं, तो एक से दूसरा ताल मिला करके डांस करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। अगर कोई हाथ ऐसा उठा रहा है, कोई ऐसा उठा रहा है, टांग ऐसा उठा रहा है, वो सिंक्रनी नहीं है, हार्मनी नहीं है, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब हम समाज में रह रहे हैं, तो एडजस्ट होकर के अगर नहीं चलते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगा? लोनलीनेस, अकेलापन। अकेले रह सकते हैं फिर, थोड़े समय के लिए अच्छा है, वो स्पेस चाहिए हर एक को प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, लेकिन जिंदगी में फिर अकेलापन, हमेशा के लिए अकेलापन हो जाता है। तो इसीलिए अभी वो आदत डालनी पड़ती है। इसलिए विदेशों में प्रॉब्लम, भारतीय संस्कृति में फिर भी है, फैमिली सिस्टम है, वो सब है, लेकिन विदेश में लोनलीनेस क्यों है? क्योंकि पहले से ही वो फैमिली सिस्टम नहीं है, लेकिन वही संस्कृति इंडिया में भी अभी आ रही है। तो इसीलिए हमें वो आने नहीं देना है ना, एडजस्टिंग पावर हमें बढ़ाना है, ताकि वो एक दूसरे की मदद मिलता है ना। ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो वो एक दूसरे का मदद मिलता था,
कैप्सूल फैमिली में फिर लोनलीनेस, फिर वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती है उसमें, है ना। तो इसलिए एडजस्टिंग पावर कैसे बढ़ाए, तो हर एक के अंदर गुण को देखने की आदत डाले, तब जाकर के एडजस्ट करना बहुत इजी होता है। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू डिस्क्रिमिनेट या परखने की शक्ति, डायमंड को परखने के लिए लेंस रखते हैं, लेंस रख करके फिर पता चलता है वो कितने कैरेट का है, कितना शुद्ध है, कोई दाग तो नहीं है, वो पता चलता है। और सोने को परखने के लिए कसौटी, वो पत्थर होता है उस पर घिसते हैं तो पता चलता है वो सोना कितना कैरेट का है ना। तो इन चीजों को परखने के लिए ये चीजें यूज करते हैं। तो अपने बुद्धि में भी वो परखने की शक्ति बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, एडजस्टमेंट करना है, एक दूसरे को पॉजिटिविटी को देखना है, गुणों को देखना है, एक बात है, एक शक्ति है। लेकिन परखना भी एक शक्ति है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से मैंने एक बार धोखा खाया तो वो मेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है, चलो उस पर विश्वास कर लिया, मैंने धोखा खा लिया, वो किसी की भी गलती नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति से मैंने धोखा खाया तो किसकी गलती है, मेरी गलती है, क्योंकि पहले से मैंने लेसन नहीं सीखा तो दोबारा मैंने ये कर लिया। और तीसरी बार उसी व्यक्ति से मैंने धोखा खाया तो क्या होगा, मुझे किस क्या बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे, स्टूपिड बोलेंगे, बुद्धू बोलेंगे, है ना। तो मैंने परखना बहुत जरूरी है। दो चीजों को हम परखते हैं, व्यक्ति को परखते हैं और परिस्थिति को परखते हैं। व्यक्ति को तब परखते हैं जब हमें बड़ा बिजनेस डील करना होता है उस व्यक्ति से, या गहरा संबंध जोड़ना होता है उस व्यक्ति से, तब हम परखते हैं, राइट। वैसे तो हर एक को हम परखने नहीं जाते, जब हम संबंध जोड़ना चाहते हैं किसी भी लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में या पर्सनल लेवल में संबंध जोड़ने के लिए जाते हैं तब हम परखते हैं। तो अगर मेरा परख ठीक नहीं है तो फिर गलत डिसीशंस हम ले लेते हैं, राइट। परिस्थिति में भी है, इस परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है हमें समझ आनी चाहिए। वो तब आएगा जब मेरे अंदर जो बुद्धि है वो क्लियर है, परखने की शक्ति मेरे अंदर है। तो परखने की शक्ति कैसे आएगा, यहां तो सोने को परखने के लिए कसौटी है, मतलब पत्थर है, डायमंड को परखने के लिए वो लेंस है, उसके आधार से परख लिया। लेकिन हमें कोई व्यक्ति को परिस्थिति को परखना है तो क्या करना है, किस आधार से परखेंगे, केवल गुणों को देखते हैं ना, तो कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता है। जो अंदर वो बुद्धि में प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि बहुत क्लियर होना चाहिए, वो बुद्धि की क्लैरिटी, परखने की शक्ति मेडिटेशन से आता है। जितना हम मेडिटेशन करते जाएंगे बुद्धि के अंदर क्लैरिटी आता जाएगा, क्लैरिटी के आधार से परखने की शक्ति, क्योंकि कहीं किचड़ा है तो परख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो मेडिटेशन की शक्ति के आधार से हम परखने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ा सकते हैं, और परखने के आधार से निर्णय करने की शक्ति होती है। ये दोनों शक्तियां बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति। ये जो चित्र आप देख रहे हैं न्याय की देवी का चित्र है, इस ये जो मूर्ति है वो कहां देखते हैं, न्यायालय में देखते हैं। और इस मूर्ति के हाथ में, न्याय की देवी के हाथ में, एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में तलवार है ना। तो तराजू किसका प्रतीक है, अनबायस डिसीजन वो होता है, और ये तलवार सजा देने का, है ना, एक टुक होकर के, सही या गलत समझने में समझने के बाद अपना पराया ना देख करके सजा देने का। और इसके आंखों पर पट्टी है, आंखों पर पट्टी माना अपना पराया नहीं देखना है। क्या आंखों पर पट्टी डालने से अपना पराया नहीं देखते हैं क्या? आंखों पर पट्टी डालने से पक्षपात नहीं होता, आंखों पर पट्टी डालने से अपना पराया नहीं देखते। अगर ऐसा होता तो महाभारत नहीं होता, राइट? पुत्र मोहवश जो भी उन्होंने गलत निर्णय लिया तो वो परखने की निर्णय शक्ति तो था ही नहीं वहां, है ना। तो अपना पुत्र मोहवश उन्होंने जो भी निर्णय दिया वो गलत निर्णय ही दिया। मतलब आंखों पर पट्टी बांधने से मेरा निर्णय राइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आंखों पर पट्टी माना ये मैसेज मिल रहा है उससे कि जो दिख रहा है वो होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। कई बार हम कुछ देख लेते हैं, वो देखने के आधार से हम अपना इमेजिनेशन कर लेते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, शायद ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, अपना ही इमेजिनेशन, मनगढ़ंत कहानियां हम बुन लेते हैं। बुनने के बाद निर्णय भी ले लेते हैं, निर्णय लेने के बाद कर्म भी कर लेते हैं, कर्म करने के बाद फिर पछताते हैं क्योंकि पता चलता है कि सच क्या है। बचपन में हम चुप कहानी सुनते थे, एक जंगल था, जंगल में परिवार बसा हुआ था, पति पत्नी और छोटा सा बच्चा। पति रोज जंगल में जाता था लकड़ी काटने के लिए, पत्नी घर में अकेली रहती थी, छोटा सा बच्चा था 6 महीने का, और उसके घर में नेवला था, और पानी भरने के लिए वो बाहर जाती थी, कुएं से पानी भर के आती थी, तो नेवले को बोल के जाती थी बच्चे के ख्याल रखना। एक बार पानी भर करके वापस आई तो क्या देखा उसने, नेवले के मुंह पर खून के डब्बे। तो उसने खून के डब्बे को देख करके क्या सोचा, अपने बच्चे को मार दिया। तो वो घड़े को नेवले के ऊपर डाल करके भाग करके देखा तो सांप मरा हुआ था और बच्चा जिंदा था। बाद में उसको पछतावा हुआ। माना जो देखते हैं, देखने के आधार से अपना ही कुछ सोच, इसने ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, तो इसलिए गलत निर्णय लिया उसने, गलत निर्णय लेकर के गलत कर्म किया, और फिर बाद में जाकर के उसको जब सच्चाई पता चला तो वो पछतावा हुआ, राइट? कई बार हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है ना? कहीं इसीलिए कभी भी कुछ निर्णय लेना है जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धीरज धर करके सच क्या है वो देख करके फिर निर्णय ले, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करें। जो दिखता है उसके ऊपर 100% विश्वास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पूछताछ करके क्या है सच एक्चुअली वो करना है। और दूसरी बात है आंखों पर पट्टी माना इंट्यूशन की बात सुनना, अपने विवेक की बात सुनना, अपना अंतर मन की आवाज को सुनना, क्योंकि अंतर मन कभी भी झूठ नहीं बोलता। पहली बार कोई चोरी करता है, पहली बार कोई गलत काम करने जाता है तो अंदर से वो आवाज आता है, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, लेकिन उसको दबा करके फिर हम करने लगते हैं तो क्या होता है, कर तो लेते हैं, आदत बन जाती है। एक बार दबाया, दूसरी बार जब करने जाते फिर भी वो बोलता है, चुप नहीं रहता है, नहीं करो, नहीं करो। 3-4 बार हमने कर लिया, 8-10 बार हमने वो गलत काम कर लिया, वो आवाज बंद हो जाता है, आवाज बंद हो जाता है, और जो गलत है वो नेचुरल संस्कार बन जाता है, वो करना हम शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा पाप है तो विवेक का खून करना, माना अपने जो विवेक का जो आवाज आ रहा है, अंतर मन का आवाज आ रहा है, उसको चुप करा देना, उसको उसका खून कर देना, उसको चुप करा देना, क्योंकि फिर वो बोलता ही नहीं है। 8-10 बार अगर कोई आपके पास आए और बोले, आप कहते हैं कि नहीं करो नहीं करो, फिर भी वो करता है, तो आप फिर बोलना बंद करेंगे ना उनसे? आप अपना राय देंगे नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है, क्यों, तुमको जो करना है तो कर लो। ऐसे भी विवेक भी कम बंद हो जाता है। तो इसीलिए उसको बंद नहीं करिए, और उसको जो बोलता है अंतर मन की आवाज जो बोल रहा है उसको सुन करके वैसे करने की हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए होता है ना, कई बार हमारे अंदर हिम्मत ना होने कारण से, क्योंकि झूठ बोलना इजी है, और ये अंतर मन कह रहा है कि झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ बोलना इजी है, सच बोलना मुश्किल है। सच बोलेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा पता है, लेकिन उस समय फिर भी सच बोलना, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होता है ना। हिम्मत रख करके अंतर मन की आवाज को सुन करके उसको ऐसा करते हैं तो वो और बुलंद होता जाता है, और उसके जैसे हम डिसीजंस लेने लगते हैं तो सही मार्ग पर हम चलने लग पड़ते हैं। और तीसरी बात यह है, मेडिटेशन के आधार से हम निर्णय करने की शक्ति को भी हम बढ़ा सकते हैं। जितना मन शांत होता जाता है, अगर निर्णय शक्ति नहीं है लेकिन उसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? जितना हम शांति की शक्ति को अनुभव करते जाएंगे, मन जितना शांत होता जाता है बुद्धि के अंदर क्लैरिटी आती जाती है। तो निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाना है तो शांति की अनुभूति करते जाएंगे तो निर्णय करने की शक्ति बढ़ता जाएगा। और सातवीं शक्ति है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। वैसे तो कहा कि सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियां अपोजिट है लेकिन दोनों जरूरी है, है ना। सामना करने की शक्ति अपने अंदर धारण करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत है तो हम सामना करते हैं, लेकिन हिम्मत थोड़ा भारीपन लगता है। लेकिन इसको और लाइट करना है तो जिंदगी एक खेल समझते हुए चले, बहुत इजी लगने लगता है। खेल में क्या हार जीत तो होती रहती है, हार जीत, लेकिन एक बार हार लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तो नेक्स्ट टाइम फिर जीतेंगे। तो हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत कहां हारते हैं? जहां डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हाँ मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, ये नहीं है। खेल समझ करके आगे बढ़ते रहेंगे तो हम जरूर जिंदगी को सामना हम कर सकते हैं। इसमें देखते हैं, ये व्यक्ति सर्फिंग कर रहा है, इतना बड़ा वेव है, लेकिन वेव को देख करके वो अगर वो डर जाए, अरे बाप रे ऐसा कैसा होगा, लेकिन उसको स्किल, उसके स्किल को तो भी सीखना होगा, कैसे सर्फिंग करना होता है वो सीख जाता है तो वो खेल लगने मजा उठा सकते हैं सर्फिंग का, है ना। तो ऐसे ही जिंदगी में कैसे हम जिए, कैसे उसका आनंद उठाएं, और उसके लिए अलग अलग बातें, आध्यात्मिक बातें हम सीखेंगे समझेंगे, जिंदगी को गहराई से समझना शुरू करते हैं तो जिंदगी एक खेल लगने लगता है और बहुत भारी नहीं लगता, बहुत हल्के रह सकते हैं। और अंतिम शक्ति है आठवीं शक्ति, सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। समाज में रह रहे हैं तो हम सभी को सहयोग की जरूरत है, मदद की जरूरत है। हम अकेले तो नहीं जी सकते, हर व्यक्ति से हमें मदद चाहिए। तो मदद कैसे मिलेगा? मदद मांगने से मिलेगा, प्लीज मेरी मदद कर लीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कर लीजिए। मदद जितना हम करते जाएंगे उतना मिलता जाएगा। लेकिन कई बार हम मदद तो कर लेते हैं लेकिन बाद में क्या होता है? मान लीजिए एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको बहुत फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, धन की मदद चाहिए, तो मैंने ठीक है मैंने मदद कर लिया हर तरीके से, मेरे अपने बहुत मतलब आउट ऑफ द वे भी जा करके बहुत मेरे कैपेसिटी नहीं थी, तो फिर भी मैं बहुत कोशिश करके उसकी मदद की हर तरीके से, फाइनेंशियली भी हर तरीके से मैंने उसकी मदद कर ली। ठीक है, प्यार है, स्नेह है, फ्रेंड है, मदद कर ली, वो अच्छा हो जाए, जिंदगी में सेट हो जाए। लेकिन दो तीन साल के बाद मुझे जब मदद की जरूरत होगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? वो अभी वेल सेटल्ड है, वो तो उसी के पास जाएंगे क्यों? और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके पास नहीं जाएंगे लेकिन उस व्यक्ति के पास जरूर जाएंगे क्यों? अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस नहीं, अथॉरिटी समझेंगे कि मैंने उसकी मदद की थी, अभी उसको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये अथॉरिटी समझते हैं, मेरा है ना, मैंने किया था ना, तो उसको करना पड़ेगा। अभी अथॉरिटी समझ करके हम उसके पास जाते हैं, करना पड़ेगा, चलो कर लो प्लीज। बोलने का तरीका अलग होता है लेकिन मन में क्या होता है, अथॉरिटी होता है, राइट? लेकिन किसी भी कारण से उसकी मजबूरी है, नहीं कर पाएगा कुछ मदद, तो हम क्या सोचेंगे? पछतावा नहीं, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आएगा। देखा, इतना आउट ऑफ द वे जाकर के उसकी मदद की थी, लोगों ने बोला था मदद नहीं करो, फिर भी उनका नहीं सुना मैंने, फिर भी मदद किया, देखा कोई एहसान नहीं है उसको, तो एक पल में पराया कर दिया। ये है, पता चलता है कि जब मुश्किल आता है तो कौन अपना है। बहुत गुस्सा हो जाता है, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? और फिर सोचेंगे, फिर वो प्रॉमिस कर लेंगे, जिंदगी में एक शपथ ले लेंगे किसी की मदद नहीं करना है। यू राइट है, कोई मदद करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो मदद आज से मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। क्यों? तो एक्सपेक्टेशन के बिना आप कुछ करेंगे क्या? बिना एक्सपेक्टेशन के आप कुछ कर्म करते हैं, कर सकते हैं? चलिए, आप यहां आए, क्यों आए? कुछ एक्सपेक्टेशन तो था, हाँ? अगर यहां से कुछ नहीं मिलने वाला था, अच्छा यहां क्यों आए हैं आप? अपने जीवन बिजी शेड्यूल में से चार पांच दिन निकाल करके आप यहां क्यों आए हैं? अगर आपको पता चलता यहां से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये तो एक्सपेक्टेशन था, यहां जाएंगे तो जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा, मेडिटेशन सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने होगा, तो फिर एक्सपेक्टेशन तो रख करके आए हैं, राइट? अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगा तो दोबारा आएंगे, आपको अच्छा लगा होगा दोबारा आएंगे, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होगा तो नहीं आएंगे आप, राइट? तो हर कर्म जब हम करते हैं एक्सपेक्टेशन रख करके करते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के इंसान कोई करता नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशन रखना गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं उसकी मदद कर रही हूं तो मुझे उससे ही मदद चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। कर्मों की कुयगति क्या कहता है? जो आप दुनिया को दोगे वापस आपको मिलेगा। ये नहीं इसमें है कि आप जिसको मदद करोगे वो उसी से मदद मिलेगा। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसके साथ बुरा करो तो उससे ही बुरा मिलेगा, नहीं, उसके साथ अच्छा करो तो उससे ही अच्छा मिलेगा, नहीं। मैं जो करूंगी वो लौट कर कहीं ना कहीं से मुझे वापस मिल जाएगा। मैंने मदद की लेकिन मुझे जब मदद की जरूरत है जरूरी नहीं कि उसी से मदद मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिल ही जाएगा, एक गारंटीड है। लेकिन जब एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, इसी से चाहिए, बेचारा वो उस घने में कोई रस्सी नहीं है, रस खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो घना क्या देगा उसको, वो है ही नहीं उसके अंदर, राइट। तो इसीलिए आप निस्वार्थ भावना से सेवा करना माना, ये एक्सपेक्टेशन नहीं, उसी से चाहिए। ये तो पता है जो देंगे वो वापस मिलेगा, तो वो जब समझ है हमें देने में खुशी होगी। दे रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है तो कोई उमंग उत्साह नहीं है देने में, राइट। देंगे तो मिलेगा जरूर, तो वो उमंग उत्साह जब आता है तब आएगा जब ये समझेंगे बात को। तो इसीलिए कहेंगे निस्वार्थ भाव से हम देते जाएंगे, निस्वार्थ भावना से मुझे मिलता जाएगा, है ना। तो इसीलिए मदद देते जाए निस्वार्थ भावना से, फिर वो मदद मिलना ही है मुझे, राइट। तो इस आधार से समाज चलता है, परिवार चलता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस आधार से चलता है, राइट। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, सहयोग की शक्ति। तो ये सभी अष्ट शक्तियां हैं। इन अष्ट शक्तियों को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं 100%, कभी हम अभी तक क्या होता है, कभी हम सहन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी हम सामना करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन है लाइफ में, कभी हमारे निर्णय राइट होते हैं, कभी रॉन्ग हो जाता है, फ्लक्चुएशंस है। तो लेकिन 100% सभी शक्तियां अपने अंदर आता है तो फिर हर कर्म राइट होता जाता है, हर कर्म यथार्थ होता जाता है। तो इसीलिए ये कर्म क्षेत्र है, कर्म संन्यास नहीं है। कर्म क्षेत्र में हमें जीतना है, कुरुक्षेत्र तो वो युद्ध है, लेकिन कर्म क्षेत्र में हम लड़ाई करके युद्ध करके हम जीत नहीं पाते, दूसरों के दिलों को हमें जीतना है कर्म क्षेत्र में, ये है हमारा युद्ध, है ना। अपने ही विकारों पर विजय पा करके दूसरों के दिल पर राज्य करना, तो ये बड़ी बात है। इसलिए इसको अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जो आपने आध्यात्मिकता के बारे में अभी तक जो समझा उसको अप्लाई करना है कर्म में, आध्यात्मिक ज्ञान को जितना हम अप्लाई करते जाते हैं कर्म में, कर्म क्षेत्र में, उतना हम सफल होते जाते हैं। तो इसलिए एक पावरफुल डायमंड की तरह आत्मा बन जाती है। वैसे डायमंड जब हीरा खान से निकलता है तो एक पत्थर की तरह, एक काला पत्थर जो देख रहे हैं ना, वो पत्थर की तरह होता है, लेकिन उसी पत्थर को एंगल से काटते हैं और तराशते हैं, पॉलिश करते हैं, बहुत सुंदर वो डायमंड हो जाता है। और डायमंड बहुत हार्ड है, उस डायमंड को आप कोई पत्थर से या लोहे से काट नहीं सकते, डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही चाहिए, बहुत ही हार्ड स्टोन है वो डायमंड, सबसे हार्ड स्टोन है डायमंड, और बहुत खूबसूरत भी है, राइट। जब वो शाइन होना शुरू होता है तो बहुत ही खूबसूरत है। आत्मा भी डायमंड की तरह है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही खूबसूरत है। आत्मा के अंदर वो शक्ति है डायमंड का, लेकिन अभी क्या करना है, थोड़ा सा तराशना है बस, वो शाइनिंग को बढ़ाना है, थोड़ा सा तराश, जो भी किचरा है, गंदगी है, थोड़ा बहुत है, दाग है, वो सब कुछ निकाल करके निकाल देंगे और उसकी जो शाइनिंग है और बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो मेडिटेशन के आधार से, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से, इन सभी नेगेटिविटीज को निकाल करके, जितना आप निकालते जाएंगे, आत्मा रूपी डायमंड, उसकी जो शाइनिंग है और बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओम शांति।